हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अबीर ने अकरम के सामने जोया को शादी के लिए प्रपोज किया था। अकरम को अबीर का ये बड़प्पन काफी अच्छा लगा था, जो ये जानने के बाद भी जोया को अपनाना चाहता था कि जोया माँ बनने वाली थी। लेकिन अकरम ने अबीर से कहा था कि उसे कुछ समय चाहिए ताकि वो जोया से इस बारे में बात कर सके। तब अबीर ने पूछा, लेकिन क्या कारण है जो आप समय मांग रहे हैं? मैं सच में बेहद मोहब्बत करता हूँ उससे, आखिर आप मान क्यों नहीं रहे हैं? तब अकरम ने कहा, अबीर साहब, जोया का एक बड़ा ही दर्दनाक अतीत है। जोया से शादी का सोचने से पहले आपको उसका वो अतीत जानना होगा, और अगर उसका सच जानने के बाद भी आप जोया से शादी करना चाहें तो आपका स्वागत है। अबीर ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं प्यार करता हूँ उससे और उसी से शादी करूँगा। मुझे उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि उसका अतीत जानने के बाद मैं अपना फैसला बदल लूँगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। अबीर की बात सुनकर अकरम कुछ भी बोलने से पहले अपने दोनों हाथ अपने मुँह पर फेर रहा था और अपना थूक निगलता हुआ बोला, अबीर साहब, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप खुद जोया से बात करें। मैं चाहता हूँ उसका अतीत जोया खुद आपको बताए। ये सुनते ही अबीर की हैरत का ठिकाना न रहा और वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। तब अकरम ने कहा, जोया के साथ जो भी हुआ है, अगर वो आपको अपनी मर्जी से बताएगी तो शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। पर मैं आपको इतना बता दूं कि जोया को शातिर नफरत है मर्दों से। वहीं दूसरी ओर अरहम का समय हो चुका था और वो एयरपोर्ट जाने के लिए निकल चुका था। अरहम एक कैब से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। उसने अरमान से साफ साफ इनकार कर दिया था कि कोई भी उसे छोड़ने नहीं जाएगा और न ही वो घर से गाड़ी लेकर जाएगा। अरहम ने उससे ज्यादा सवाल नहीं किया और उसे गले लगाकर विदा करने लगा। जैसा तू कहेगा मैं तेरी बात मानूंगा। तू नहीं चाहता कोई तुझे छोड़ने जाए तो कोई नहीं जाएगा। तुझे गाड़ी नहीं ले जानी, मत ले जा। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे जोया हर हाल में चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पर जोया चाहिए, बस। अरहम ने हाँ में सिर हिला दिया और वो वहां से निकल गया। अरहम रास्ते में सड़क पर चारों ओर देखता हुआ जा रहा था, लेकिन कहीं भी उसे वो चेहरा नहीं दिखा जिसे वो पिछले दो दिनों से ढूंढ रहा था। अब एयरपोर्ट पहुंचने में केवल कुछ ही मिनटों का फासला था कि तभी एयरपोर्ट से ठीक 10 मिनट की दूरी पर उस कैब का टायर पंक्चर हो गया और गाड़ी झटके खाकर रुक गई। अरहम का मूड बेहद खराब हो गया था, लेकिन उसे मजबूरन उस गाड़ी में से उतरना पड़ा। कैब वाले ने उसे कहा, साहब, आगे आपको खुद ही जाना होगा क्योंकि गाड़ी ठीक होने में काफी वक्त लगने वाला है। अरहम ने उसे उसके पैसे दिए और वो अपना बैग घसीटते हुए किसी रिक्शा या दूसरी कैब की तलाश में धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ सा चलने लगा था। अरहम वैसे तो प्रॉपर ठीक हो चुका था, लेकिन उसकी एक टांग में बाल आ गया था जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा था। अरहम को काफी दूर तक कोई भी गाड़ी या रिक्शा नहीं मिला। एयरपोर्ट ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसने पैदल ही चलने का निश्चय किया, लेकिन टांग में दर्द की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं चल पाया था और उसे सामने एक चाय की टपरी दिखाई दी। उसकी फ्लाइट में टाइम था तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर उस चाय की टपरी पर आराम कर लिया जाए। ये सोचकर वो उस चाय की टपरी पर चला गया और वहां पड़ी एक टूटी सी कुर्सी पर बैठ गया। अपनी दुकान पर ग्राहक को देखकर चाय बनाने वाली औरत एक झटके से अरहम के पास पहुंच गई और बोलने लगी, साहब, आपको कैसी चाय चाहिए? अरहम को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी और उसने अपनी नज़र उठाकर ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए और अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा, चांदनी। वो चाय बेचने वाली कोई और नहीं बल्कि चांदनी थी। चांदनी अरहम को देखकर सकपक गई थी और एक झटके में उसे सब कुछ याद आ गया जो अरहम ने बंद पड़ी फैक्ट्री में उसके साथ किया था, जिस दिन के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। चांदनी अरहम को देखते ही वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अरहम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोलना शुरू कर दिया, चांदनी, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, और राजा कहाँ है? चांदनी अरहम का हाथ झटकते हुए नफरत से बोली, क्यों अरहम साहब, क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे? क्या अभी कुछ बाकी रह गया है? नहीं चांदनी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो... तब चांदनी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, साहब, मैं कोई चांदनी नहीं हूँ। अब पहले वाली चांदनी तो उस दिन उसी फैक्ट्री में मर चुकी थी। अब मेरा नाम चंदा है, चंदा, और मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाली औरत हूँ जो अपने परिवार को पालती है। तब अरहम अचानक चांदनी का हाथ पकड़कर रोने लगा। चांदनी को काफी अजीब लगा कि ये क्यों रो रहा है। तब उसने अपना एक छोटा सा फोन निकाला और किसी को वहाँ आने के लिए कहा। और अभी मुश्किल से 10-5 मिनट ही गुजरे थे कि मिले जुले कपड़ों में सिर पर एक मैला सा मफलर बांधे हुए राजा वहाँ आ पहुँचा। और जैसे ही उसने अरहम को चांदनी का हाथ पकड़े हुए देखा, वो बिजली किसी तेजी से उनके बीच जाकर खड़ा हो गया। और आते ही अरहम का हाथ झटक कर उसका गिरेबान पकड़ लिया था। लेकिन अरहम को राजा की इस हरकत पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था। और अगर उसकी जगह पुराने वाला अरहम ठाकुर होता तो शायद अब तक राजा का हाथ धड़ से अलग हो चुका होता। लेकिन जैसे ही राजा ने अरहम की आंखों में आंसू देखे, उसने धीरे धीरे उसका गिरेबान छोड़ दिया और बोला, क्या करने आए हैं आप यहाँ? अरहम की नज़रें बार बार कभी चांदनी पर ठहर रही थीं तो कभी राजा पर। कहाँ एकदम स्टाइलिश कपड़े पहने हुए खूबसूरत सी चांदनी और कहाँ ये मैले जुले साड़ी में लिपटी हुई चांदनी। कल की चांदनी और आज की चांदनी में जमीन आसमान जितना अंतर था। और वही हाल राजा का था। एकदम स्टाइल में रहने वाला चुलबुला सा लड़का आज क्या बन चुका था? राजा किसी गाँव का गरीब मजदूर लग रहा था। उन दोनों की इस हालत का जिम्मेदार अगर कोई था तो वो पूरी तरह से अरहम ठाकुर था। राजा ने कड़क आवाज में पूछा था, क्या करने आए हैं आप यहाँ? अरहम ने तड़प कर राजा का हाथ पकड़ लिया और रोने लगा और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। प्लीज़ राजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और चांदनी, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया हो तो प्लीज़ भूल जाना और मुझे गुनहगार को माफ़ कर देना, प्लीज़। अरहम रो रो कर कभी चांदनी से माफ़ी मांगता तो कभी राजा से। अरहम को इस तरह से देखकर उन दोनों को उस पर रहम आ गया। और चांदनी ने राजा से कहा, कोई बात नहीं अरहम साहब, आप रोइए मत। जो भी आपने मेरे और राजा के साथ किया उसके लिए हम दोनों आपको माफ़ करते हैं। आप अपने दिल पर बोझ मत रखिए और चले जाइए। अरहम चांदनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, वाकई तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। वेल, मैं तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर तुमने वो कबूल कर लिया तो मैं समझूंगा कि सचमुच तुम लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। राजा और चांदनी हैरानी से अरहम की ओर देखने लगे। और तब राजा बोला, अरहम साहब, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा ना, हमने माफ़ कर दिया है आपको। अरहम ने कहा, मैं जानता हूँ आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बट प्लीज़ मुझे मेरा गिल्ट थोड़ा कम करने का मौका दे दो, प्लीज़। ऐसा कहकर अरहम उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। तब राजा और चांदनी ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अरहम ने अपने किसी आदमी को फ़ोन किया, क्योंकि अरहम की फ़्लाइट भी थी तो अरहम को जो भी करना था वो जल्दी जल्दी करना था। अरहम के फ़ोन करने के केवल कुछ ही मिनटों के अंदर ही अंदर 3-4 गाड़ियाँ वहाँ आ पहुँची थीं। अरहम ने अरमान से अलग होकर अपना बिजनेस बढ़ाया था, तो वो भी माल और दौलत में किसी से कम नहीं था। अरहम चाहता तो कैब खराब होने के बाद वो अपने लिए और गाड़ी मंगवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ज़िंदगी को और करीब से देखने का फ़ैसला किया था। मौत के मुंह से आने के बाद उसे ज़िंदगी और मौत का फ़र्क अच्छे से समझ आ गया था। अरहम ने अपने आदमियों को सारी बात समझा दी और जो वो चांदनी और राजा के लिए करना चाहता था उसने किया, और कुछ डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी साइन किए। राजा और चांदनी हैरत से अरहम को देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि आखिर ये करना क्या चाहता है। तब अरहम अपने हाथ में वो साइन की हुई फ़ाइल लेकर राजा के पास गया और वो फ़ाइल उसे दे दी। राजा ने पूछा, ये सब क्या है? तब अरहम ने कहा, इसमें आप दोनों के लिए घर, गाड़ी और एक छोटे से होटल के डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आप दोनों के नाम कर दिए हैं। बाकी सारी चीज़ें मेरे आदमी आपको समझा देंगे और आपके नए घर में ले जाएंगे। चांदनी और राजा बुरी तरह से शॉक हो चुके थे और वे अरहम की दरियादिली नम आँखों से देख रहे थे। तभी अरहम उन दोनों से विदा लेकर अपने एक आदमी के साथ वो एयरपोर्ट की ओर चला गया, क्योंकि उसकी फ़्लाइट किसी भी वक्त आ सकती थी और उसका हर हाल में अमेरिका पहुंचना बेहद ज़रूरी था। वो जल्द से जल्द ज़ोया से मिलना चाहता था। अबीर ने जैसे ही अकरम के मुंह से ये सुना कि ज़ोया को मर्दों से नफ़रत है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। तब अबीर ने अकरम की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और तब वो बोला, ठीक है, अगर ज़ोया मेरे सवालों का जवाब देगी तो मैं अब उसी से ही बात करूंगा और पूछूंगा आखिर क्यों नहीं करना चाहती है वो मुझसे शादी और क्या वजह है पूरी मर्द जात से नफ़रत करने की। अबीर ने कहा, मैं ज़ोया से मिलना चाहता हूँ। अकरम ने एक नज़र उसे देखा और बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ। उसके बाद अकरम उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले गया। उन दोनों ने वहां जाकर देखा कि रिया जोया के कमरे के बाहर खड़ी थी और उससे दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही थी। अकरम ने पूछा, क्या हुआ, जोया कहाँ है? रिया ने कहा, वो जोया ने खुद को कमरे में लॉक कर लिया है और बोल रही है कि उसे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। तब अकरम ने अबीर को उसके कमरे की चाबी दी और बोला, ये लीजिए, आप जाइए और उससे बात कर लीजिए। और अबीर साहब, एक बात का ध्यान रखना, मैं अपनी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। अकरम ने कोल्ड वर्ड में अबीर को धमकी दी थी।